मैं डॉक्टर था, मेरे साथ में जिसको मैं चॉकलेट दे रहा हूँ उसका हाथ उड़ गया गोली से। जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं आवाज लगी कि इस साइड से फायर आया तो हम दूसरी साइड में कूदे, हमने पोजीशन ली। लेकिन जो डीएसपी साहब थे बिना हथियार के राइट साइड में कूद गए जिस साइड में टेररिस्ट थे, कि मैंने मेरी टीम के 17 के 17 जवानों को जिंदा बचाया और ऊपर से जो जिहादी पाकिस्तानी हम पे फायर कर रहे थे हमने उनको भी नीचे गिराया। दोस्तों, जिंदगी में आपको कोई जगह नहीं देता है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा परिचय, मैं हिंदुस्तान का एक बहुत ही प्राउड सिटीजन जिसको लोग मेजर सुरेंद्र पुनिया के नाम से जानते हैं और मेरे दोस्त मुझे सनी पुनिया कह के पुकारते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी राजस्थान के किसान परिवार से शुरू होती है। बचपन में मैंने देखा कि कैसा किसानों का जीवन है, कितने संघर्ष हैं और हर दिन वो दिन रात खेत में जाके मेहनत करते हैं। उससे मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मुझे ज़िंदगी में कहीं आगे जाना है तो उसकी पहली कड़ी वो है हार्ड वर्क और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द कोज। क्योंकि किसान ये नहीं देखता कि बारिश कब होने वाली है, और होगी या नहीं होगी, अकाल पड़ेगा या फसल होगी, फिर भी वो हर रोज़ अपने खेत में जाता है और मेहनत करता रहता है। उसके बाद में मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन में हुई, जहाँ पे मैंने हॉस्टल में शेयरिंग और केयरिंग का जो करेक्टर था वो मेरे अंदर आया और मैंने बहुत कुछ सीखा उस स्कूल में। उसके बाद में मैं हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का अकेला ऐसा कॉलेज है देश में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें हैं, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव था जिसने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ सिखाया, क्योंकि वहाँ से मेरी सैनिक जीवन की शुरुआत हुई। और मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में गया, मैं हिंदी मीडियम का छात्र था और वहाँ पे देश से विभिन्न क्षेत्रों से आर्मी के जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे थे मेरे साथ, जिसको आप रैगिंग कहते हैं, हम आर्म फोर्सेस के अंदर उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। और जब हमारा रोज़ाना रगड़ा लग रहा था सुबह शाम, और नए नए बच्चे 18-19 साल के जब हम कॉलेज में पहुँचे, तो एक दिन शाम को कर्नल साहब, जो कि हॉस्टल वार्डन थे, वो कैडेट से मिलने के लिए आए और उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, कोई तकलीफ, सब ठीक तो है ना, किसी की कोई तकलीफ हो तो बताइए। और उन्होंने इतने प्यार से पूछा कि जो बहुत सारे जो कैडेट्स थे वो रोने लगे, अपनी अपनी शिकायतें बताने लगे कि सर खाना नहीं मिल रहा टाइम पे, बहुत कम टाइम मिलता खाने का, सीनियर्स तंग करते हैं, सीनियर्स बहुत भगाते हैं, सीनियर्स बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, सीनियर्स सोने नहीं देते, सीनियर्स ये नहीं करने देते। उन्होंने सबकी बातें सुनी और उसके बाद में उन्होंने सारे सीनियर्स को बुलाया और बुला के कहा कि इनकी इतनी शिकायतें हैं, इनकी शिकायतें दूर कीजिए। हमें लगा कि हमारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। और उसके बाद में उस रात को 8 बजे से लेकर सुबह जब तक पीटी हो रही थी तब तक हर बैच सीनियर्स का आ रहा था और हमारा रगड़ा लगे जा रहा था, दौड़ना, भागना, फ्रंट रोल, क्रॉलिंग। उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि शिकायतों का जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। हर आदमी के पास शिकायतें हैं, आप अपनी शिकायतें अपने पास रखिए। इफ़ यू आर इन द सिस्टम देन यू हैव टू अडॉप्ट टू दैट सिस्टम। अगर आप सेना में आए हो, किसी ने आपको न्योता दे के नहीं बुलाया है, अगर आए हो तो सेना की परंपराएं, सेना के तौर तरीके, सेना का डिसिप्लिन, सेना के जो एथिक्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फेस द म्यूजिक मैन, फेस द म्यूजिक। उसके बाद में मैंने मेरी लाइफ में एक नियम बनाया कि कभी कोई शिकायत नहीं करनी है। जो भी होगा, चाहे मुश्किल होगा, चाहे टाइम लगेगा, चाहे हार्डवर्क करना पड़ेगा, चाहे परेशानी होगी, लेकिन शिकायत नहीं करनी है। दोस्तों, कॉलेज में रहते हुए मैं जूनियर आर्मी चैंपियनशिप खेला, यूनिवर्सिटी खेला, मैंने कॉलेज के लिए मेडल जीते। और एक बार मेरे एक सीनियर ने कहा कि तुम नेशनल खेल के आ गए हो, तुम आर्मी चैंपियनशिप खेल के आ गए हो, तुमसे कॉलेज के रिकॉर्ड नहीं टूटे। क्योंकि मेरी कॉलेज के आर्मी के जो रिकॉर्ड थे वो 1968 के थे और जिन्होंने बनाया था वो सारे के सारे नेशनल चैंपियन थे। मैंने गांठ बांध ली कि इस कॉलेज से मैं तभी निकलूंगा जब मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। मैंने 3 साल लगातार मेहनत की, आर्मी ने मेरे लिए कोचेज प्रोवाइड किए, बेस्ट से बेस्ट कोचेज आर्मी ने, मेरे सीनियर्स ने, और उसके बाद में मैंने 99 में 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री 5,000 मीटर के जो 38 साल पुराने रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए, एक रिकॉर्ड बच गया। उससे मुझे ये भी एहसास हुआ कि दुनिया में सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके बस की नहीं है, चाहे आप कितनी भी जान लगा दें तो उसके लिए आपको हताश नहीं होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में मैं आर्मी में कमीशन हुआ और मैंने मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स जो यंग ऑफिसर्स का कोर्स है वो किया, उसमें मैंने अल्फा ग्रेडिंग ली, कोर्स टॉप किया। टॉप करने के बाद में वहाँ पे कमांडर थे ब्रिगेडियर KBB सिंह, वो पैराशूट रेजिमेंट के थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तू क्या पैराशूट रेजिमेंट में जाना चाहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 लाख की भारतीय सेना के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8,000 सोल्जर्स और ऑफिसर्स सिर्फ पैराशूट रेजिमेंट और स्पेशल फोर्सेज में होते हैं, वही लोग जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान को बताया कि हमारी औकात क्या है, पाकिस्तान को उसकी औकात बताई थी, वही स्पेशल फोर्सेज। ये मेरे लिए एक सपना था, मैं कॉलेज से जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता था जो मैरून कैप लगाते थे, जो छाती के ऊपर बलिदान का बैस लगाते थे कि मैं कभी इस रेजिमेंट में जाऊँगा। और जब मेरे को ब्रिगेडियर साहब ने पूछा तो मैंने कहा कि सर ये तो आपने जैसे कहते हैं भगवान ने ही पूछ लिया कि कहाँ जाना है, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। दोस्तों मैं गया वहाँ पे, मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं कश्मीर में 2 पैरा स्पेशल फोर्सेज के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई। उसका मैं एक आपको वाकया बताना चाहता हूँ। दोस्तों ज़िंदगी में आपको कोई जगह नहीं देता है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। पहले का एक एस्टेब्लिश्ड एनवायरनमेंट है, आपको जाके अपने आप को उनके अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है। मैं पहले दिन पूछा और स्पेशल फोर्सेज में एक से एक धुरंधर लोग, हर जवान हर ऑफिसर सारे के सारे चैंपियंस हैं। मुझे लगा कि मैं आज कहाँ आ गया, पहली बार एक आतंकवाद वाले क्षेत्र में। और सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे रन हो रहा था और जो PT उस्ताद जो कि सबसे फिट बंदा होता है रेजिमेंट का, वो वहाँ पे उसने मेरा टेस्ट शुरू किया और मैंने उसको हरा दिया। जो जब मैं दौड़ ख़त्म करके खड़ा हुआ तो CO साहब आए, उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, दौड़ क्यों नहीं रहा। मैंने कहा सर मेरी दौड़ ख़त्म हो चुकी है। हाउ कम, क्या तू उससे भी तेज है? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर तूने उसको अभी दोबारा नहीं हराया मैं भी दौड़ूंगा। अब वो बहुत अच्छे एथलीट थे CO साहब, तो उसके बाद में मैं तेरे को आज ही वापस भेजने वाला हूँ। दोस्तों मैं बिल्कुल थका हुआ था लेकिन मैंने कहा कि ये आज मेरे पास मौका है मेरे बॉस को और सबको प्रूव करने का कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई बिलोंग्स टू स्पेशल फोर्सेज। मैंने जस्ट 15 मिनट का टाइम लिया, मैंने कहा सर आइए मैं दौड़ता हूँ। मैंने CO साहब और उस्ताद के साथ में फिर दौड़ा और मैंने फिर हराया। और मेरे CO साहब ने मेरे को कहा कि चलो ऑफिस में चल, और उन्होंने वहीं पे एक बड़ी ट्रॉफी है रेजिमेंट की जो वार में जीती हुई ट्रॉफी है, 1971 में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए वो ट्रॉफी मंगवाई उन्होंने, उसमें उन्होंने पूरा बीयर से भर दिया और जो कैप थी मेरी उन्होंने उसमें डाली। उन्होंने कहा कि चलो यू बिलोंग्स टू दिस प्लेस। उसके बाद में मेरी जर्नी में मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करता हूँ। दोस्तों एक वाक्य मैं आपको और बताना चाहूँगा कि फौज क्या क्या सिखाती है आपको। एक दिन कश्मीर में अनंतनाग में हमारी यूनिट ने 3 टेररिस्ट मारे और शाम के टाइम अचानक जन साहब का मैसेज आया कि उस एरिया में दोबारा पेट्रोलिंग पे जाना है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल पुलिस के जो DSP थे, एक नए ऑफिसर थे, वो उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ जाएंगे। तो मैं चल रहा था और मेरे एक सीनियर थे वो मेरे साथ चल रहे थे, करणवीर सिंह, ग्रेट ऑफिसर, ग्रेट टीम कमांडर, बहुत ही जोशीले व्यक्ति, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो हम साथ में चल रहे थे, आगे 2 बड़ी फिर सर चल रहे थे और उसके बाद में 2 लोग और जो पुलिस के जो DSP साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे आदमी है वो, लेकिन गलतियाँ हर आदमी से होती हैं दोस्तों, वो चल रहे थे उनके साथ में, उनका बड़ी और उनके पीछे मैं चल रहा था। तो उनका जो हथियार था उन्होंने अपने बड़ी को पकड़ा दिया और हाथ में एक डंडा ले लिया, रात का टाइम था। तो जो ही मेरे सीनियर ने देखा उन्होंने कहा कि सनी इनको बोलो कि अपना हथियार AK-47 अपने साथ लें। तो मैंने बोला कि सर आप अपना हथियार ले लीजिए AK-47, अपने बड़ी को क्यों दे रखा है। उन्होंने कुछ नहीं होता यार, जस्ट आपने 3 घंटे पहले 3 टेररिस्ट मारे, अब सारे टेररिस्ट यहीं थोड़ा ना बैठे। दोस्तों ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो ही होता है। हम 15-20 मीटर चले, सर ने मेरे को फिर कहा कि इनको बोल दो अपना हथियार ले लें। मैंने फिर बोला और वो हंसने लग गए मेरे को, उन्होंने कहा कि तू बच्चा है अभी, तू नया नया कश्मीर में आया, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ उनको, दोस्तों शायद एक या डेढ़ मिनट रात के अंदर हम चल रहे थे, अचानक सामने से टेररिस्ट आ गए, उन्होंने फायर खोला और हमने भी फायर खोला। तो हम खेत की पगडंडी के ऊपर चल रहे थे, एक साइड में इधर नीचे खेत थे, इधर नीचे खेत थे और ऊपर पगडंडी बनी हुई थी और बारिश का मौसम था, खेतों में पानी भरा हुआ था। दोस्तों जो ही उस साइड से फायर आया तो हमारा जो रिस्पॉन्स था, हमें आवाज़ लगी कि इस साइड से फायर आया, तो हम दूसरी साइड में कूदे, हमने पोजिशन ली। लेकिन जो DSP साहब थे बिना हथियार के राइट साइड में कूद गए, जिस साइड में टेररिस्ट थे, और उधर से लगातार फायर पे फायर आने लगा, उनके आसपास गोलियां आने लगी। और DSP साहब बोलने लगे अपने बड़ी को कि मेरा हथियार दे, मेरा हथियार दे। लेकिन बड़ी हथियार कहाँ से देगा दोस्तों, क्योंकि दोनों के बीच में कम से कम 10 मीटर का गैप आ गया, 10 मीटर की ऊंचाई थी जो रास्ता बना हुआ था, वो उस साइड में अकेले पड़े हैं और हम सारे के सारे राइट साइड से हम फायर कर रहे हैं। हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि आप ऊपर आइए, क्योंकि हमारा फायर टेररिस्ट के ऊपर जा रहा है, दूसरी साइड से टेररिस्ट कंटिन्यूस हमारी साइड में फायर कर रहे हैं, उनके आसपास गोलियां लग रही हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, कुछ देर बाद में टेररिस्ट भाग गए वहां से। और जब हम वापस आए तो मेरे सीनियर ने, सारे जनरल साहब सब आए, उन्होंने कहा कि क्या हुआ फायर में, क्या क्या हुआ। तो मेरे को कहा कि सनी जाके आप इस ऑपरेशन के बारे में बताओ, लर्निंग ऑफ दिस ऑपरेशन। दोस्तों मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कि दोस्तों फौज ने सिखाया है मरते दम तक कश्मीर में आपका हथियार आपका साथी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। बाथरूम जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मैस में जाएंगे, बॉस से मिलने जाएंगे, दौड़ने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपका हथियार आपके साथ में रहेगा, रहेगा मतलब रहेगा, ये फौज की सिखलाई है, उसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं, अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी, हो सकता है उसमें आपकी जान जाए, आपके साथियों की जान जाए। मैंने कहा आगे से भविष्य में कभी आप अपना हथियार मत छोड़िएगा। और उन्होंने मेरे को आके, आज तक भी जब भी मेरे से मिलते हैं हमेशा कहते हैं कि मेरे साहब SF स्पेशल फोर्सेज की जो सिखलाई है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों कहने का मतलब है यात्री अपनी खुद की और अपने सामान की सुरक्षा का जिम्मेदार है, लेकिन फौज के अंदर आप सिर्फ खुद की ही सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी टीम की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों उसके बाद में मैं कश्मीर के अंदर मैंने 8 महीने किया, सब फिर सियाचिन गया, सियाचिन से वापस मैं आगरा आया, आगरा से मैंने वापस ऑप्ट किया। और मेरे बचपन का एक सपना था कि हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेज 10 पैरा जो डेजर्ट स्पेशल फोर्सेज है कि मुझे वहां जाना है। मैंने दोबारा ऑप्ट किया, मैं वापस कश्मीर गया और मैंने 10 पैरा के साथ रहते हुए इतने बुलंद ऑफिसर्स, इतने टैलेंटेड ऑफिसर, इतने बहादुर ऑफिसर्स के साथ काम किया। और एक ऑपरेशन की आपको कहानी बताता हूं दोस्तों। 10 पैरा में रहते हुए हमने एक ऑपरेशन किया टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे, और हम टेररिस्ट को मार के जब वापस नीचे आ रहे थे उसी समय दूसरी साइड में पहाड़ी पे पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, उन्होंने अचानक हम पे हमला बोल दिया। वो ऊंचाई पे थे और हम ऊंचाई पे थे, उन्होंने इतना भयंकर फायर खोला कि पहले 10-12 सेकंड तक हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। लेकिन उसके बाद में मेरे एक सीनियर थे ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा, जो सियाचिन के कमांडर भी थे और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई की है, उन्होंने कहा देखते क्या हो, इनको चुन चुन के मारो। हमने वापस फायर खोला उनके ऊपर, लेकिन उस दौरान दोस्तों 17 लोगों को गोलियां लगी जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे 17 लोगों को गोलियां लगी। मैं डॉक्टर था, मेरे साथ में जिसको मैं चॉकलेट दे रहा हूं उसका हाथ उड़ गया गोली से। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं आपको कोई हाथ में चॉकलेट देने वाला है और उसी वक्त गोली आए, उसका हाथ कट जाए, उसके चेस्ट में गोली लगी, मैं नीचे गिरा, वो सब नीचे गिर गए, आसपास के लोगों, मेरे बड़ी सत्यवान जो बाद में शहीद हुआ एक दूसरे ऑपरेशन में, उसको भी गोली लग गई। चारों तरफ से रेडियो कॉल पे आ रहा है। मैंने उनको बोला कि मैं डॉक्टर हूं इस टीम में, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। मैंने एक बड़ा पत्थर उठा के मेरे माथे के सामने रखा कि मेरे सिर पे गोली नहीं लगनी चाहिए। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे को भी एक ग्रेनेड का आगे स्प्लिंटर मेरे पैर में लग गया। दोस्तों ऐसा माहौल था और मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। लेकिन मुझे मेरे जो उस्ताद थे, जब मैं स्पेशल फोर्सेज में आया था, उन्होंने मुझे सिखाया था कि इंसान की, हर मर्द की असली पहचान तब होती है जब वो जिंदगी के सबसे क्षण, सबसे मुश्किल क्षण में वो खड़ा होता है, उस समय आपके करैक्टर की पहचान होती है। दोस्तों जंग जान देके नहीं जीती जाती, जंग जान लेकर जीती जाती है। और स्पेशल फोर्सेस का नियम है कि अंतिम वक्त तक, खून की अंतिम बूंद तक हम लड़ेंगे और अपने साथियों को बचाएंगे। स्पेशल फोर्सेस दोस्तों हमें, हमारी टीम को, हमेशा एक ही चीज सिखाई गई है, इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट, टीम इज द इंपॉर्टेंट। और टीम के लिए अगर आपको जान देनी पड़े तो अपनी जान दे दीजिए। दोस्तों उस ऑपरेशन के अंदर हमने चॉपर बुलाए, हेलीकॉप्टर बुलाया कि ये 17 लोगों को मैं वहां से भेजूं वहां से, लेकिन चॉपर नहीं उतर सका क्योंकि ऊपर से गोलियां आ रही थी। लेकिन जो मेरे साथ, मेरे जो टीम के साथ ही 17 लोग जिनको गोलियां लगी हुई, जिनका चेस्ट में, जिसके थाई में, जिनको 5-5, 6-6 गोलियां लगी हुई हैं। और दोस्तों आपको पता है जब मौत सामने आती है, लोग बोलते हैं कि डर नहीं लगता, वो झूठ बोलते हैं। डर हर आदमी को लगता है, लेकिन बहादुर वो है जो डर के माहौल में डर से लड़ते हुए अपने आप को बचाए, अपनी टीम को बचाए, अपनी टीम का हौसला मजबूत रखे। दोस्तों मुझे पता था कि अगर मैंने हिम्मत हार दी, मैं हिम्मत हार गया तो शायद यहाँ पे किसी की जान जा सकती है। मैंने उनको बोला चिंता मत कीजिए ना, मेरे पास जितनी आईवी फ्लूड्स हैं सब कुछ है, मैं सब लगा दूंगा और मैं आपको 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, हिंदुस्तान का वो हॉस्पिटल आर्मी का जहां पे जिस व्यक्ति को गोली लगी और अगर समय पे पहुंच गया तो वो आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहता है। आई सैल्यूट टू ऑल दोज माय सीनियर्स डॉक्टर्स जो ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर के 92 बेस हॉस्पिटल में। दोस्तों मेरा जो जूनियर जिसको चेस्ट में गोली लगी, उसको पता नहीं था कि उसको चेस्ट में गोली लगी, अचानक जब वहां से आवाज आई तो उसने बोला कि सर मेरे दिल में गोली लग गई। मैंने बोला दोस्त दिल लेफ्ट साइड में होता है, ये तो राइट साइड में लगी है, तू जिंदा रहे, जिंदा रहेगा। और साथियों मैंने सबको जिंदा बचाया। जब वहां से मैं वापस आया मुझे पता नहीं था कि मेरे पैर में ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर घुस गया, लेकिन मुझे आज तक उस ग्रेनेड का जो दर्द है कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने मेरे टीम के 17 के 17 जवानों को जिंदा बचाया और ऊपर से जो जिहादी पाकिस्तानी हम पे फायर कर रहे थे हमने उनको भी नीचे गिराया और उनको भी भगाया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है मुश्किल वक्त हर आदमी की जिंदगी में आएगा, ये इतनी आसान नहीं है। अगर आपको सांसें दी हैं तो मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन आपका असली चरित्र उस दिन सामने आएगा जब आपके साथी, आपका परिवार, आपका देश, आपकी टीम मुसीबत में है और उस समय आप क्या कर रहे हैं। अगर उस दिन आप उनके साथ खड़े हो गए तो आप जैसा बहादुर, आप जैसा चरित्रवान, आप जैसा राष्ट्रभक्त, आप जैसा साथी, आप जैसा यार, आप जैसा प्रेमी और आप जैसा बेटा है बेटी नहीं है दुनिया में कोई। साथियों अंत के अंदर मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, जिंदगी में सारे सपने पूरे नहीं होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण के नहीं हुए, श्री राम के नहीं हुए, हनुमान जी के नहीं हुए, जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नहीं हुए, डॉक्टर कलाम के नहीं हुए। मैंने उनके साथ काम किया, उनके भी सपने पूरे, उनका सपना था कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, वो राष्ट्रपति बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो याद रखना कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। और कितनी गगरियां टूटी पनघट पर अभी भी चहल पहल है उस पर, कितनी कश्तियां, लाखों कश्तियां डूबी समंदर में, फिर भी चहल पहल है समुंदर पे। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आप लगे रहिए अपने लक्ष्य में, दोस्तों अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपनी टीम की हमेशा हिफाजत कीजिए, हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और भारत को फिट करने में मेरा साथ दीजिए। मैंने एक मिशन चलाया है फिटिस्तान एक फिट भारत, एक सपना है कि इस देश का हर नागरिक, आप, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, हर नागरिक हेल्दी हो, फिट हो, हैप्पी हो। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।
पता है हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं दो चीजें, पहली वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं, पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपने सालों की कहानियां, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंट कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।